आती है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तो आन और क्रांति की तो शान है। कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? कौन है जो व्यक्त के जीवन को बिसराएगा? अव्यक्त क्रांति के वहन से विश्व को बचाएगा। उठ कदम बढ़ा, तेरी सांस में तूफान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। छोड़ दे इन बंधनों को, तोड़ दे ये बेड़ियां। जंजीरों में कब बंधी ये तपती चिंगारियां? तेरे हर कदम पे साथ स्वयं भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। तेरे बल पे अब भी देख बाबा को गुमान है। करवटे नहीं तुझे बदलना अब जमाना है। तेरे दम से ही ये जमी आसमान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति है अव्यक्त की पुकारे भगवान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है। क्रांति की तू आन और क्रांति की तू शान है।
दिल में जो चुपते थे, रहते थे दुबके से गाने लगे। पलकों की खिड़की पे अरमा वो चुपके से आने लगे। परों को हवा दे, कांधों को शाबाशी देकर चल पड़े। दे मौका जिंदगी, इम्तहानों से हम ना डरे। दे मौका जिंदगी, खुले आसमां में हम चले। दे मौका जिंदगी, इम्तहानों से हम ना डरे। दे मौका जिंदगी, पीते हुए कल से मिले। शिकवे सभी हम भुला, ऐसे लगे फिर से गले। जैसे कभी थे ना गिले, फिर से दिए मुस्कुरा। दे मौका जिंदगी, दिल में जो छुपते थे, रहते थे दुबके से गाने लगे। पलकों की खिड़की पे अरमा वो चुपके से आने लगे। परों को हवा दे, कंधों को शाबाशी देकर चल पड़े हम। दे मौका जिंदगी, इम्तहानों से हम ना डरे। हर परीक्षा हमें परिपक्व बनाती है। एग्जाम उस रबर की तरह है, जो एक बार खिंच गया तो वापस वो पुरानी साइज उसकी नहीं आएगी। हमारे अनुभव को वो खींचती है। जो पहला वर्शन है स्वयं का, वो नहीं रहेगा। हम अपडेट होते जाते हैं। हर परिस्थिति, हर परीक्षा, हर पेपर हमें आगे ही बढ़ाता है। उसका परिणाम महत्वपूर्ण इतना नहीं है, परंतु वो पेपर, उससे गुजरना, उस परिस्थिति से को पार करना, हर परिस्थिति पेपर, हर पेपर परिस्थिति है, वो हमें क्या करता है, आगे बढ़ाता है, एक अनुभव देता है। तो 21 दिन की यह व्यक्त क्रांति की भट्टी कल पूरी हुई, अब हमारे पास 3 दिन है, 22, 23, 24। इन 3 दिनों में परीक्षा की तैयारी करनी है। वो कैसे करें? पढ़ाई की परीक्षा की तैयारी तो 21 दिनों से चालू ही है, पर अभी उसको रिवाइज करना है। उसके लिए स्ट्रेटजी चाहिए, उसके लिए मेथड्स चाहिए, स्मार्ट स्ट्रेटजीज। एक पिता कोई अखबार पढ़ रहे होते हैं तो उनका छोटा बेटा उन्हें बार बार डिस्टर्ब करते रहता है, कुछ ना कुछ सवाल पूछते रहता है। वो सोचते हैं इसे किसी बात में एंगेज कर देते हैं ताकि ये सवाल ना पूछे। तो वहां पर एक कागज होता है जिसमें पूरे विश्व का नक्शा बना हुआ होता है। वो अपने बेटे को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं इस नक्शे के टुकड़े टुकड़े कर देता हूं, तुम इसे फिर से जोड़ देना। पिता को लगता है कि अभी 2-3 घंटा ये बिजी हो जाएगा और वो वापस अपनी अखबार पढ़ने लग जाते हैं। वो बच्चा 5 मिनट में आ जाता है और कहता है पिताजी मैंने जोड़ दिया। वो पिताजी देखते हैं तो वास्तव में उस बच्चे ने जोड़ दिया। तो तुमने ऐसे कैसे कर दिया? वो कहता है इसके पीछे एक कार्टून बना था, मैंने केवल उस कार्टून को जोड़ दिया। तो जीवन की भी समस्या है, बातें जो बहुत बड़ी लगती है और बहुत कठिन लगती है, उन सब के पीछे एक कार्टून बना हुआ है। कल की अव्यक्तवाणी परिस्थितियां क्या है? कल की अव्यक्तवाणी शाम की परिस्थितियां क्या है? कार्टून कल था ना, संतुष्ट मणि। उस कार्टून को देख लेना बस, हर परिस्थिति में एक कार्टून छिपा हुआ है, उसके पीछे, उसको अगर जोड़ दिया, उसको अगर देख लिया तो ये परिस्थिति इतनी बड़ी नहीं लगेगी। फिर देयर इज अ कार्टून हिडन इन एवरी सिचुएशन, सी द कार्टून, इट विल बी अ लाफिंग स्टॉक। तो हमारे पास 3 दिन है, इन 3 दिन में हम क्या करें? सबसे महत्वपूर्ण ये एग्जाम हमारे नॉलेज की एग्जाम नहीं है, हमारे स्थिति की एग्जाम है। नॉलेज की नहीं है, स्थिति की, माइंडसेट। सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? माइंडसेट। कैसे हम अप्रोच कर रहे हैं? एक है भय से, फियर, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, डर है। कोई भी एग्जाम हमेशा एक डर रहता है उसके पीछे। हर एग्जाम एक चैलेंज है, हमारे मेमोरी की परख है, हमारे स्थिति की परख है, कितना हम रिकलेक्ट कर सकते हैं उसकी परख है। एक स्कूल में एक बच्चे को एग्जाम में पेपर आया था, व्हाट इज चैलेंज, उसने सारे पेज खाली छोड़ दिए और लास्ट में लिखा अगर पास कर दो, पास कर सको तो करके दिखाओ, दिस इज चैलेंज। पर ऐसा नहीं करना, जब पेपर कठिन होता है तभी स्टूडेंट को यह पता चलता है कि जो एग्जामिनेशन हॉल में उसकी दीवारें कहां कहां क्रैक है, छतों पर जाले कहां कहां हैं, डीप ऑब्जर्वेशन करता है एग्जामिनेशन हॉल का। कब? जब पेपर कठिन हो और उसे कुछ ना आता हो। तो आजकल जो पैटर्न है एग्जाम्स का वो दो प्रकार का है। एक तो एमसीक्यू पैटर्न, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एक प्रश्न उसके चार या पांच उत्तर, उसमें से एक टिक करो, ए बी सी डी ई, कई बार पांच होते कई बार चार होते। एक तो ये, दूसरा पैटर्न है क्वेश्चन है उसका आंसर लिखना है, राइटिंग। आजकल ये कम है ये ज्यादा है, और हमारी जो एग्जाम होने वाली है वो भी एमसीक्यू पैटर्न की एग्जाम होने वाली है। तो एमसीक्यूज तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? कोई भी एग्जाम ले लो, कहीं कहीं भी दुनिया की जो भी एग्जाम है उसमें तीन प्रकार के एमसीक्यू होते हैं। सबसे पहले होते हैं लॉजिक बेस्ड, लॉजिक होता है उसमें, आपको लॉजिक लगाना है, ये है तो क्या होगा, क्या हो सकता है। दूसरे है फैक्ट बेस्ड, भारत का वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है, इसमें कोई लॉजिक नहीं लगा सकते आप, जो है उत्तर वही देना है, अगर वो छोड़कर और कुछ दिया तो रॉन्ग, दैट इज फैक्ट बेस्ड। तीसरा है कैलकुलेशन बेस्ड, आपको कैलकुलेट करना है, ये है फिर कैलकुलेशन करके कितना है, उसमें फिगर्स है, उसमें थोड़ा मैथ्स है, सम करना है थोड़ा। तो ये तीन प्रकार के एमसीक्यू होते हैं। लॉजिक, जो हमारे लॉजिक को टेस्ट करता है, उसके लिए हमें उस सब्जेक्ट के बारे में बहुत सारी चीजें पहले से पता रहनी चाहिए। फैक्ट के लिए तो बहुत अध्ययन की आवश्यकता है, आप इसमें कुछ भी तुक्का नहीं मार सकते, उसमें आपको रट्टाफिकेशन पूरा के पूरा उसको याद ही कर लेना है, और कुछ कुछ चीजें जो याद करनी है वो एकदम नॉनसेंसिकल होती है, उसका कोई लॉजिक नहीं होता है, पर वही उत्तर है तो वहां फिर मेमोरी टेक्निक्स का यूज करना होता है। और कैलकुलेशन बेस्ड, कैलकुलेशन होते हैं उसमें, कुछ कैलकुलेट करना पड़ता है, दिमाग लगाना पड़ता है, यहाँ ये यहाँ वो, तो ये करके कितना आएगा, वहां के वहां वो पहले से याद करके नहीं जा सकते आप 4, 5, 6, 2 + 8, 9, 7, 2, ये आने वाला ये थोड़ी ना पता है, तो वहां के वहां कैलकुलेट करना है, और वो भी फास्ट कैलकुलेट करना है। हाँ हाँ, तो हाँ, तो दैट इज कैलकुलेशन बेस्ड। लॉजिक बेस्ड, लॉजिक में आप हमेशा दो चीजों पे अटक जाओगे, अगर चार ऑप्शंस है दो तो बिल्कुल है ही नहीं उसमें से, और हमेशा ऐसा होगा कि ये जो है सी और डी इन दोनों में से एक है, यहां आके गाड़ी अटकती है, तो या तो सी हो सकता है या तो डी हो सकता है, सी हो सकता है डी हो सकता है, और दोनों ही एकदम ही राइट लगते हैं, जैसे दोनों जुड़वे भाई है, उसमें से पहचानना है राम कौन है और श्याम कौन है, ईना कौन है मीना कौन है, तो वो दो में से हमेशा कंफ्यूजन रहता है, इसके लिए स्टडी बहुत एक्यूरेट चाहिए और टेक्निक्स चाहिए, हमारे पास स्किल्स चाहिए, स्मार्ट स्टडी, वो नहीं कि कोई एक बच्चा बैठा है और वो चार घंटा पढ़ाई करता है, आठ घंटा पढ़ाई करता है लाइब्रेरी में तो वो आगे चले जाएगा, नहीं, यहाँ क्या चाहिए, स्मार्ट, थोड़ा सा पढ़ लो और पूरा ग्राप्स कर लो उसको, जैसे आजकल जो पावर पॉइंट बनाते हैं लोग, एक है बैठे रहो और पावर पॉइंट बनाते रहो पांच घंटा तक, अभी एआई टूल्स आए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट टूल्स, यू कैन क्रिएट पावर पॉइंट विद इन 2 मिनट्स, गामा डॉट टूल्स आए हैं, उसमें से आप केवल टॉपिक डाल दो अपना, हेवन हेवन टॉपिक डाल दिया, जनरेट पिक्चर, कोई भी एक पिक्चर ले लो, फ्रेम ले लो, कलर पिकअप कर लो, और तुरंत आपके सामने स्लाइड्स रेडी, 2 मिनट में काम हो गया, एक वो है जो मेहनत कर रहे हैं बहुत सारी, याद भी रहता है वो भी अच्छा है, पर ये फास्ट दुनिया है, यहाँ पे अपडेट करते जाना है अपने आप को। बहुत सारे टूल्स है जिसकी मदद लेनी है, आप अपना मटेरियल भी डाल सकते हो उसमें, अपना मटेरियल डाल दिया एआई टूल में और तुरंत जनरेट, तुरंत जनरेट हो गया विथ ब्यूटीफुल बैकग्राउंड, कलर्ड बैकग्राउंड, पिक्चर्स, एआई पिक्चर्स, सतयुग के पिक्चर्स, एकदम स्मार्ट स्मार्ट वाले देवी देवता, वो पुराने वाले नहीं जो हम पहले निकालते थे या जो चित्र दिखते मंदिरों में, वो वाले नहीं, एकदम स्मार्ट वो सब तुरंत आ जाता है उसमें। तो ये सारे स्किल्स है, ये सारी टेक्नोलॉजी है, इनका प्रयोग करना है। तो आज हम देखेंगे कुछ टिप्स पढ़ाई के लिए। तो हमारे पास 3 दिन है, हमारा पोर्शन है 40 मुरलियां, 40 मुरलियों को 3 दिन में रिवाइज करना है, और अपनी दिनचर्या है उसमें अपनी सेवाएं है, बहुत सारे कर्म है, सेंटर है, स्टूडेंट्स है, जॉब है, कितनी सारी बातें है, वो सब तो चालू रहेगी, प्लस परिस्थितियां, परिस्थितियां जो आनी है वो तो आती रहेगी, प्लस लोगों के कमेंट्स, वो दूसरा। जैसे एक व्यक्ति एक तीर्थ स्थान पर पहुंचता है, वो देखता है ये क्या हो रहा है, ये तीर्थ स्थान है, ये तो टूरिस्ट स्पॉट है, लोग खरीद रहे हैं कुछ कपड़े खरीद रहे हैं, फैशन की चीजें खरीद रहे हैं, शॉपिंग मॉल्स है वहां पे, कुछ कोई आइसक्रीम खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, खाने पीने की चीजें है, कोई खेल कूद कर रहा है, वो सोचता है ये तीर्थ स्थान है, होलीएस्ट ऑफ द प्लेस, वो बहुत दुखी हो जाता है, और ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ऐसे करते हुए उस तीर्थ स्थान की गलियों में घूमते रहते हैं, और अचानक से एक भविष्यवाणी होती है। वो भविष्यवाणी उसको क्या कहती है, वो कहती है ये सारे लोग जो तीर्थ स्थान का मुख्य मंदिर है ना, पहले वहां जाके सब कुछ करके उसके बाद कर रहे, तुमने अभी कुछ भी नहीं किया, और तुम क्या कर रहे हो, क्रिटिसिज्म। ये सब वो लोग हैं जो मुख्य कार्य जो है मंदिर या जो भी पूजा पाठ उपासना साधना वो सब करके उसके बाद ये सब कर रहे, तुम अभी अभी आए हो, तुमने वो जगह भी गए नहीं जो काम करना था, और क्या कर रहे हो, विरोध, क्रिटिसिज्म। ना तो 21 दिन की भट्टी पूरी की, ना तो कोई होमवर्क किए, ना तो उन रूल्स को फॉलो किया, और फिर विरोध करना, क्रिटिसिज्म करना। लायन जोन बहुत कड़ा वाला जोन है। केवल शेर उसमें पहुंचेंगे, बाकी नहीं और उसमें भी फुल 100%। तो कल जिसका अनाउंसमेंट किया था ट्रॉफीज का, वो भी हम सोच रहे हैं रियल ट्रॉफीज देंगे, रियल ट्रॉफी होती ना वो, पर 100% क्रॉस चेकिंग भी होगा। ऐसे नहीं कि हमने तो सारा होमवर्क कर दिया, हमने ये भी कर दिया, हर दिन का जो होमवर्क था, डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, शेप चार्ट्स, वो सब किया और रख दिया, नहीं, जो भेजा था 21 डेज, केवल वही उसमें जाएंगे। अब लेट हो गया तो क्या, जब भविष्यवाणी होती कूद जाओ, परी बन जाओगे, बाद में फ्रैक्चर, कहानी सबको पता है, इसलिए टाइम इज गॉन। तो एग्जामिनेशन टिप्स आज हम देखेंगे, उससे पहले एक मेडिटेशन आज सबको सीखना है। उस मेडिटेशन को कहा जाता है 5 senses मेडिटेशन, और ये मेडिटेशन आप कब करेंगे, जब भी पढ़ाई के लिए बैठोगे, पढ़ाई अर्थात मुरली की स्टडी, मुरली का अध्ययन, वो करने जब भी बैठोगे उसके पहले 1-2-3 मिनट ये मेडिटेशन करना है। इट इज कॉल्ड एज 5 senses मेडिटेशन, और बीच बीच में करते रहना ये, और बहुत सिंपल है। 5 senses अर्थात हमारी जो इंद्रिय है उसको क्या करना है, एक्टिवेट करना है पढ़ाई से पहले। और पढ़ाई के लिए क्या क्या चाहिए, एक तो स्टडी टेबल हो, सारी किताबें रखी हो, मुरलियां रखी हो, पेंस रखे हो, स्केच पेंस रखे हो, पेंसिल्स, जो भी मटेरियल है, वैसा एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करना है, और हो सके तो एक ही स्थान पर जहां पर हम बैठते ही वो एटीट्यूड आ जाए कि अभी हमें पढ़ना है। वो नीचे भी हो सकता है, जमीन भी हो सकती है, जितना हो सके वो बेड ना हो, बेड पर नींद के वाइब्रेशन से, इसके लिए बेड से बाहर। तो फाइव सेंसेस मेडिटेशन, इसमें हम क्या करते हैं, इस मेडिटेशन में हम पहले तो ये आईज क्लोज करके किया जाता है, दूसरा हम एक एक सेंसेस पर फोकस करते हैं, कान पर फोकस, फिर आंखों पर, कान पर, नाक पर, मुख पर और स्किन, चमड़ी। ये फाइव सेंसेस है, इनको हम एक्टिवेट करते हैं। इसमें आप इसको अपने रीति से कर सकते हो, अपनी कमेंट्री खुद बना सकते हो। कुछ दो तीन बातें अभी हम आपको बताएंगे, तो सभी अलर्ट होके बैठेंगे, आंखें बंद। ओम शांति। मन शांत, शरीर की हलचल बंद। अपनी आंखों को देखेंगे मन की आंखों से। मैं आत्मा इन आंखों को धन्यवाद देती हूं, इन आंखों के कारण मैंने इस जीवन में कितने अलौकिक और लौकिक दृश्य देखे, भगवान को देखा, उसके महावाक्यों को देखा, मधुबन को देखा, भगवान के बच्चों को देखा, इस संसार का कितना ज्ञान मैंने इन आंखों के द्वारा प्राप्त किया। इन आंखों को दिल से धन्यवाद। मेरी आंखें अब अलर्ट हो गई है, दिव्य हो गई है, दृष्टि में रूहानियत भर गई है। पवित्रता भर गई है। अब मैं आत्मा इन कानों की तरफ चलती हूं। मेरे ये कान संसार की जो भी आवाजें हैं मैं इन कानों के द्वारा सुनता हूं, और आज मैं इन कानों को धन्यवाद देता हूं। जो भी आवाजें सुनाई दे रही है वो सुनेंगे, ये संगीत जो बज रहा है, और उसके अतिरिक्त भी यदि कोई आवाजें आ रही है तो उन्हें सुनेंगे। स्वयं भगवान के महावाक्य मैंने इन्हीं कानों से सुने, अब समस्त चेतना को नाक की ओर ले जाएंगे, श्वास आ रहा है और जा रहा है। इस नाक को भी धन्यवाद, प्राण ऊर्जा भीतर प्रवेश करती है, ऑक्सीजन जाता है। होठों के ऊपर, नासिकाग्र के नीचे, सारे ध्यान को उस छोटे से हिस्से में केंद्रित करेंगे। श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। कैसा है श्वास देखेंगे। Breath is coming in, breath is going out. Just focus on the small area below the nostrils and above the lips. अब अपने सारे ध्यान को मुख की ओर ले जाएंगे। जिह्वा, टंग, टंग कैसी है इस समय, वेट और ड्राई, गीली है या सूखी है, टेस्ट क्या है उसके ऊपर। अपने इस मुख को धन्यवाद करेंगे, इस जिह्वा को, जिसकी वजह से मैं बोल सकता। ध्यान को अपने स्किन की ओर ले जाएंगे। ऊपर से नीचे तक जो भी चमड़ी है, बॉडी सरफेस है, उस पर हो रही भिन्न भिन्न संवेदनाओं को देखेंगे। कपड़ों का स्पर्श, धन्यवाद इस स्किन को भी। समग्र चेतना को प्रकृति के मध्य केंद्रित करेंगे। व्हाइट लाइट, यहां देखेंगे मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा हूं, मेरे सामने पेपर है, सभी प्रश्न बहुत सहज है। आई एम टॉपर, I am winner, I am achiever, I am number one, I am Murli champion, I am Murli athlete, एक एक प्रश्न मुझे भगवान से जोड़ रहा है। प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं सूक्ष्म वतन में पहुंच जाता हूं। बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ आत्मा पर पड़ती है और फिर मैं प्रश्न का उत्तर लिखता हूं। ये पेपर मेरे लिए एक मेडिटेशन है। ये एक घंटे का पेपर मैं बाबा से जुड़ गया, कहीं और बुद्धि नहीं जा रही है। 25 तारीख सुबह 5 बजे 2024 1970 की 40 मुरलियां, एक एक शब्द, एक एक लाइन मुझे कंठस्थ है। शिव बाबा से दिव्य किरणें ऊपर से मुझ पर पड़ रही है। मैं नीचे पेपर लिख रहा हूं। एक पल के लिए भी बुद्धि यहां वहां नहीं जा रही। ये एग्जामिनेशन पेपर एक घंटे का पावरफुल ज्वालामुखी योग है मेरे लिए। ओम शांति। सो दिस इज कॉल्ड फाइव सेंसेस मेडिटेशन। अभी आते हैं एग्जामिनेशन टिप्स। टिप नंबर वन, ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। ए फॉर ऑलवेज स्टार्ट अर्ली, अर्थात अगर एग्जामिनेशन 6 मास के बाद है, 3 मास के बाद है, जितना जल्दी प्रिपरेशन चालू करोगे उतना अच्छा है। ऐसा नहीं कि एग्जाम अभी 1 महीने पर है और आज से हम तैयारी चालू कर रहे हैं। जितना जल्दी चालू करेंगे प्रिपरेशन उतनी अच्छी। अभी हमारे पास 3 दिन है तो ये हमारा पहला पेपर है। उसके बाद हमारा होगा 25 अप्रैल को AMAT 2 1971 की 54 मुरलियों पर पेपर, 71 की मुरलियों पर सेकंड भट्टी चालू होगी 1 अप्रैल से। उसमें 54 मुरलियां है। अभी हमारे पास 40 मुरलियां हमने रिवाइज की थी 21 दिनों में, स्पीड बढ़ेगी। 54 मुरलियां रिवाइज होगी 21 डेज में। ये पेपर वन है, प्रैक्टिस। आगे और स्पीड को बढ़ाना पड़ेगा। और जैसे कहा, ये पेपर ऐसा होगा कि जैसे मेडिटेशन, क्योंकि प्रश्न जो है उसका ऐसी एक परिस्थिति आती है कि सी है कि बी है। यहां जब अटक जाते हो, चाहे लौकिक एग्जाम या अलौकिक एग्जाम या जीवन की परीक्षा का एग्जाम, जीवन में जो परिस्थिति आ रही है, तीनों ही एग्जाम्स, मुरली की एग्जाम, लौकिक एग्जाम, सीए की एग्जाम, आईएएस की एग्जाम, एमबीबीएस की एग्जाम, पीजी की एग्जाम, कॉमर्स की, इकोनॉमिक्स की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, जो भी, या तो जीवन में जो पेपर आ रहे वो, जब ऐसे अटक जाते हो तो तुरंत क्या करना है, सरेंडर कर देना। बाबा के पास पहुंच जाओ और बाबा को कहो अब इस बुद्धि पर कब्जा कर लो तुम, यू टेक ओवर, सरेंडर, यू टेक ओवर। और अब इतना कनेक्ट कर दो शिव बाबा से पेपर देते समय कि मैं जो मार्क करूंगा ना वही आंसर है, वही राइट है। जिसने पेपर सेट किया है, जिसके ये महावाक्य है, वो तो गलत नहीं हो सकता ना। पर अगर हम सोचो, एक बहुत बड़ी एग्जाम है और जो पेपर सेट करने वाला व्यक्ति है, हमारा सीधा उससे कनेक्शन है, तो हमारा उत्तर कैसे रॉन्ग हो सकता, चाहे कितना ही कंफ्यूजिंग क्यों ना हो। तो डायरेक्ट उसी से जोड़ दो, अपने आप को ऐसे जोड़े रखो नॉन स्टॉप वो 1 घंटा, कि जहां मार्क करेंगे बस वही उत्तर है। गलत मार्क कर रहे मतलब कनेक्शन थोड़ा लूज है। तो ऑलवेज स्टार्ट अर्ली। तो ऐसे हमारे पास अभी 3 दिन है, तो दिन को 3 भागों में विभाजित करना, सुबह का समय, दोपहर का समय, रात का समय। उठते ही 1-2 मुरलियां पढ़ लेना अमृत वेला करने से पहले, क्योंकि हमारे पास अभी 40 मुरलियां 3 दिनों में रिवाइज करनी है। और मुरलियों को 3 भागों में विभाजित करना, एक लंबी लंबी मुरलियां, एक बीच वाली मुरलियां और एक छोटी छोटी मुरलियां। छोटी छोटी जो होती है ना उसको लास्ट दिन के लिए छोड़ दो, तीसरे दिन के लिए। आज पहला दिन है तो आज बड़ी बड़ी जो मुरलियां है ना उनको ले लो, बड़ी मतलब 3-4 पेजेस वाली जो मुरलियां, 8 पेजेस वाली भी है एक, और छोटी में 1.5 पेज वाली भी है और आधा पेज वाली भी है काम देने वाली, उसको तो लास्ट दिन के लिए छोड़ दो। तो मुरली अपने पोर्शन को आपको जानना है, पढ़ाई क्या करनी है मुझे, आई मस्ट नो द पोर्शन। तो कुछ मुरलियां 8 पेज वाली है, कुछ 4 पेज वाली है, कुछ 3 पेज वाली है, कुछ 2 पेज वाली, जो बीच की है वो कल के लिए। आज क्या करना है, जो बड़ी बड़ी मुरलियां है, तो एक होता है अमृत वेले के पहले का समय, उठते ही 2-3 मुरलियां फटाफट फटाफट स्पीड रीडिंग से पढ़ लो। फिर दोपहर का समय है, दोपहर में 3-4 मुरलियां पढ़ लो। फिर रात का, शाम का समय, वहां 3-4 मुरलियां और रात को सोने से पहले 3-4, मतलब एक दिन में 13-14 मुरलियां हो जाए। ये स्पीड चाहिए अभी हमको, दिस स्पीड वी वॉन्ट, अगर पूरा पोर्शन रिवाइज करना है, क्योंकि 3 ही दिन बचे हैं। पहले 1 मुरली चलती थी 6 दिन, अब ये 13-13 मुरलियां करनी है, 13 या 14, एक एक दिन में फास्ट 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 फास्ट, ऐसी केवल नजर घूमे बस, फटाफट फटाफट पढ़ो। वो मुरली की किताब जो है ना, हाँ, उसको तो ऐसे ही लगा के ही रखना पूरा दिन रात, ऐसे छाती से, हाँ, पता नहीं यहां से इधर चला जाए। कुछ भी हो सकता है, पता नहीं कोई यूएसबी कॉर्ड ही हो यहां से इधर और पढ़ते पढ़ते बाबा को बोलते हाँ ये देखो कितना अच्छा मार्किंग करके रखना है, ये भी एक टेक्निक है। अभी इस ये मेन मेन चीजें देखनी होती है फटाफट फटाफट फटाफट। तो सबसे पहले स्टार्ट अर्ली, अभी तो वो बात नहीं है बट आगे के लिए बता के रख रहे हैं। उसके बाद में ब्रेक डाउन योर स्टडी मटेरियल इनटू मैनेजेबल चंक, ब्रेक करना है, टुकड़े टुकड़े करना है। 8 पेजेस की मुरली है तो क्या करना है, उसके 3-4 टुकड़े कर देना, अलग अलग लोकेशंस पे उसको डाल देना। और अभी आज 13 मुरलियां रिवाइज करनी है तो 13 लोकेशंस पर मुरली को डाल दो, एक को डालो शांति स्तंभ पर, एक को डाल दो हिस्ट्री हॉल में, अलग अलग कोई भी ले सकते हो चाहे तो, जो चाहे वो ले लो, बट फटाफट फटाफट लोकेशंस पर मुरलियां डाल दो। शुरुआत में ही लोकेशन फिक्स कर दो, ये हिस्ट्री हॉल में है, यहाँ हिस्ट्री हॉल में आज क्या हो रही है, सर्कस हो रही है, फट से आगे जाओ फटाफट फटाफट। और अभी अंडरस्टैंडिंग के साथ भी पढ़ना है थोड़ा सा। तीसरा है क्रिएट अ स्टडी शेड्यूल, एक स्टडी शेड्यूल बना दो, तो सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम, शाम का टाइम, रात का टाइम, कहीं गुंजाइश ही नहीं है कि टाइम वेस्ट हो, कुछ व्यर्थ चल, कुछ व्यर्थ कहीं चलने का कोई मार्जिन ही नहीं है, क्योंकि पोर्शन बहुत ज्यादा है। 13 मुरलियां रिवाइज करनी है आज के दिन, ये आज का टारगेट है। वो कौन सी 13, वो भी बड़ी वाली जो 8-8 पेज वाली है, तो स्पीड बहुत फास्ट रहनी चाहिए। उसके बाद में डोंट क्रैम, स्पेस आउट योर स्टडी सेशंस। क्रैम मतलब एक ही साथ नहीं पढ़ते रहना है 8 घंटा 6 घंटा, टुकड़े टुकड़ा करके पढ़ना है, ये सबसे बेस्ट मेथड है। एक थोड़ा सा पढ़ लिया, 2 घंटा छोड़ दिया, फिर से वापस आके उसी को पढ़ो, फिर छोड़ दिया, फिर से वापस आके उसको पढ़ो, एक ही चीज को कई बार, 13 मुरलियां है उनको 2-3 बार पढ़ना है, एक बार नहीं 2-3 बार, ताकि वो याद हो जाए कि ये यहां पेज खत्म होता है और यहां से चालू होता है। स्वामी विवेकानंद के लिए कहा जाता है कि वो एग्जाम में पहले ऐसे रहता था ना, 7 में से 5 प्रश्न छोड़ो सॉल्व करो, हाँ अनिवार्य 5 सॉल्व कर सकते, वो क्या करते थे 7 के 7 लिख देते थे और लिखते थे नोट एग्जामिनर के लिए, जो चाहिए 5 वो ले लो इनमें से जो 5 चाहिए टेक देम लाइक दैट। तो स्पेस आउट हमेशा, हाँ या स्पेस आउट, स्पेस आउट मतलब आप गैप दो बीच बीच में, क्योंकि माइंड को प्रोसेस करने के लिए टाइम चाहिए। एक बार मटेरियल डाल दिया, न्यू नॉलेज डाल दी, अब गैप दे दो और फिर उसको याद करने की कोशिश करो क्या पढ़ा था। ऐसे नहीं कि एक ही चीज को अभी एक मुरली पढ़ ली, अभी तुरंत सेकंड रीडिंग, तुरंत थर्ड रीडिंग, ये नहीं करना है। हमारी 5 बार मुरली पढ़ के हो गई, अब क्या है वो नहीं याद है कुछ भी। तो ये उसके बाद में एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस, जब पढ़ाई के लिए बैठो मोबाइल बाजू में रख दो, नोटिफिकेशंस ऑफ कर दो, कुछ नहीं, टोटल फोकस होना चाहिए, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, आवाज नहीं होनी चाहिए, कहीं एकांत में चले जाओ, छत पे चले जाओ या बाबा के कमरे में, कहीं पर भी पढ़ाई जहां करनी है करो, अपने घर में जो कमरा बना के रखा है अलग से स्टडी का उसमें पढ़ो, कोई डिस्ट्रैक्शन डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल साउंड प्रूफ। उसके बाद में फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स, खाली मेमोराइजेशन पे ध्यान नहीं देना है, कॉन्सेप्ट्स को भी समझना है। अब धीरे धीरे कनरस सुनने वाले तो बहुत है, लेकिन मनरस देने वाले अब तक दुनिया में कोई नहीं है। चित्र ऐसे हो जिसमें चैतन्यता हो, क्योंकि ये 40 की 40 मुरलियां यहां रिवाइज हुई है, तो याद करो कि ये पढ़ते समय कौन सा क्या हमने किया था, कौन सा फ्लो चार्ट बनाया था, डायग्राम बनाया था, खुद ही अपना अपना याद आएगा सबको। ये 2-3 में ही है ऐसा, बाकी तो खाली दिख रहा है, हमको लगा पूरा हो गया। उसके बाद में गेट प्लेंटी ऑफ स्लीप बिफोर एग्जाम, एग्जाम जिस दिन होती है ना उसके पहले दिन नींद अच्छी होनी चाहिए। 2 चीजों का ध्यान रखना है पढ़ाई करते समय, पानी अच्छे से पीते रहना है, वाटर, और हाँ नींद, नींद अच्छी होनी चाहिए। अगर नींद ठीक नहीं तो याद नहीं आता है कुछ भी पढ़ाई करते समय, नहीं रात की जो नींद है अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, गुड स्लीप। देन हाईलाइट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इन योर नोट्स, जैसे ये हाईलाइट करके रखे है ना, तो फर्स्ट रीडिंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, फर्स्ट 2-3 जो रीडिंग होती है ना उसमें बहुत सारे काम करने होते हैं, जैसे अभी आपको बाद में पता चलता है उसका इम्पोर्टेंस, क्योंकि अभी आपके पास एक दिन में 13 मुरलियां करनी है तो कैसे करोगे, जो मेन मेन चीज है वही पढ़ना है अभी, बस फटाफट 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 ये ले लिया, ये यहाँ था, अच्छा ये यहाँ था, ये यहाँ था, ये यहाँ था, कोशिश शब्द, ही कहते रहेंगे तो कोशिश में ही रह जाएंगे, कुछ कुछ चीजें फिर याद होने लगेगी क्योंकि हमने कई बार उसको रिपीट करते जाएंगे, रिपीट करते जाएंगे फटाफट फटाफट फटाफट, तो बहुत सारी चीजें हमको पता चले, इजी एंड अलर्ट, फिर याद आएगा अच्छा उस समय वो मुरली पड़ी तो ये था। तो इस तरह से फिर उसके बाद में अगला, आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एंड फोकस ऑन देम अकॉर्डिंगली। अपनी स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है, मुझे कौन सी चीजें भूलती है और कौन सी चीजें याद रहती है, उस पर फोकस। जैसे वीकनेस है कि जैसे ही कोई बड़ी मुरली दिखती है तो हमारी वीकनेस क्या हो जाती है कि हम सोचते हैं कि ये कठिन है, ये नहीं होगा, ये डिफिकल्ट है मेरे लिए। तो वहां पर ही माइंडसेट चेंज करना है कि ये बहुत आसान है, इसको मैं पढ़ चुका हूं, ये एक वीक पॉइंट है। वीक पॉइंट कई लोगों का ये है कि एक बार मुरली चालू करते तो पूरी नहीं कर पाते, बीच में से छोड़ देते, ये हमेशा होता हुआ है। तो अभी उस पर फोकस करो कि व्हाट आर माय वीकनेसेस एंड व्हाट इज माय स्ट्रेंथ, मेरी स्ट्रेंथ क्या है, एक बार पढ़ लूं तो बहुत अच्छा मुझे याद रहता है, दिस इज माय स्ट्रेंथ। मैं खड़े रह के पढ़ता हूं तो अच्छा याद रहता है, चलते फिरते पढ़ता हूं तो अच्छा याद रहता है, यूज देम। बैठे मुरली पढ़ने जाओ तुरंत नींद आने लगती है, ये वीकनेस है, उस पर काम करना है, आइडेंटिफाई करना है मेरी वीकनेस क्या है। फिर उसके बाद में कीप ट्रैक ऑफ की डेट्स एंड डेडलाइंस, डेडलाइन सेट कर देना है, जैसे आज का आज किसी भी हालत में 13 मुरलियां कवर करनी ही है, अब वो कौन सी है उसकी डेट्स निकाल के रखो जो बड़ी बड़ी है और पढ़ना चालू कर दो उसको, फास्ट फास्ट रिवाइज करते जाओ, पढ़ते जाओ रिवाइज करते जाओ, इधर उधर टाइम वेस्ट हो ही नहीं। देन मेक यूज ऑफ निमोनिक डिवाइसेस, जितने हमने टेक्निक्स यहां पर बताई है डिस्कस की है आपको, जस्ट हम बता रहे हैं, ये भाई ने रविनेश भाई ने सारा समराइज किया है, पर इसमें बहुत सारी चीजें अभी भी मिसिंग है जो कि 21 दिनों में सिखाई गई बताई गई। सबसे पहले कौन कौन सी टेक्निक्स हमने सीखी, पहली टेक्निक थी मेमोरी पैलेस, सब जानते हैं, फिर थी लिंक सिस्टम, फिर था ह्यूमन कैमरा एक्टिविटी विजुअलाइजेशन, फिर विजुअल बूस्टर एक्टिविटी, फ्लो चार्ट, फिर CRM कैरेक्टर रिप्लेसमेंट मेथड, कैरेक्टर रिप्लेसमेंट मेथड अर्थात ये हमने डिटेल में देखा है सब। जो टॉपिक है, टॉपिक जैसे है ग्रीन हाउस इफेक्ट, तो हम ग्रीन हाउस को हटा के उसमें पिज्जा डाल दे, जो कुछ उसके बारे में है वो सब हमने किस में जोड़ दिया, पिज्जा, ये है कैरेक्टर रिप्लेसमेंट मेथड। उसके बारे में सोचो, जैसे अर्थ के बारे में आप पढ़ रहे हो तो अर्थ नहीं है ये कैडबरी है, तो अर्थ के बारे में जितनी बातें लिखी है वो किसके बारे में लिखी है, कैडबरी के बारे में, तो तुरंत हमको याद रहती है, उसको कहा जाता है कैरेक्टर रिप्लेसमेंट मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है एक, जैसे हमको अभी कुछ चीज याद करनी है, जैसे वो हमने ये 28 राज्य देखे, वैसे एक दूसरा एक मेथड है उसको याद करने की, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है उसमें सबके नाम आते हैं अलग अलग, जैसे मोदी जी, तो मोदी जी के आधार पर हमको याद आता है गुजरात, फिर नीतीश कुमार तो याद आता है हमको बिहार, तो वो जो एक वाक्य है बड़ा उसमें रिप्लेस कर दिया है उस राज्य को उस व्यक्ति के साथ जो उसको देखा तो वो याद आएगा। एक मेगा स्टार था तो मेगा स्टार को रिप्लेस कैसे किया, मेघालय, ऐसी एक स्टोरी है। दूसरी एक वो नहीं बताई है आपको, बाद में बताएंगे। फिर उसके बाद में फ्लो चार्ट मेथड, 4-स्टेप मेथड, फिर उसके बाद में लर्निंग एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स, फिर A to Z निमोनिक टेक्निक देखी, फिर स्पीड रीडिंग बाय 3 राउंड देखा, शेप चार्ट देखा, मुरली मैराथन देखा, 30 मिनट का वो म्यूजिक दिया है ग्रुप में, फिर उसके बाद में स्टोरी टेलिंग देखा, फिर उसके बाद में सस्पेंस थ्रिलर ग्रिपिंग स्टोरी, फिर साउंड प्रूफ रीडिंग, साउंड प्रूफ रिकॉल, एक्रोनिम देखा, ड्रिप्स देखा, पिकासो देखा, IWM देखा और बहुत सारा, वो एक बॉडी वाला भी देखा था, सकाश बॉडी, एक भोजन की प्लेट का भी देखा था, उसमें 4 चीजें में डिवाइड कर दिया था भोजन की प्लेट को। तो ये बहुत सारी टेक्निक्स है, इन सब टेक्निक्स का क्या करना है, यूज करना है, तो हमारी जो एक्टिवेशन जो है माइंड एक्टिवेट रहेगा। फिर उसके बाद में नोट डाउन की पॉइंट्स इन योर वर्ड्स फॉर बेटर कॉम्प्रिहेंशन, नोट्स जो आपने बनाए हैं वो सारे नोट्स निकालो, अभी जो डायरिया बनाई है ना आज पूरी वो डायरी, आज अगले 3 दिनों में वो पूरे नोट्स रिवाइज करने, जो डायग्राम्स बनाए, जो फ्लो चार्ट्स बनाए, जो शेप चार्ट्स बनाए, वो फटाफट फटाफट रिवाइज करो सारे। उसके बाद में ऑर्गेनाइज योर स्टडी मटेरियल एंड कीप देम इजीली एक्सेसिबल, आपका जो टेबल है वहां पे सब कुछ रहना चाहिए, फटाफट जो भी जरूरत पड़ी, ये मुरली याद नहीं आ रही तुरंत उसको निकालो, अच्छा वो सर्कस वाली मुरली में क्या था, अच्छा वो डिलेज डेंजर वाली में क्या था, फटाफट फटाफट इधर से उधर, उधर से उधर घूमते जाओ, इधर से उसको रिवाइज करो, इसको रिवाइज करो, उसको रिवाइज करो, उसको रिवाइज करो। प्रैक्टिस एक्टिव रिकॉल, और जो आज मुरलिया पढ़ोगे, एक पढ़ लिया जैसे, फिर तुरंत उसको बाजू में रखो और दो तीन चीजें याद रखो उसकी, बस तीन चार ही मेन की पॉइंट्स है उसकी, वो याद कर लिया, अच्छा इसमें ये था, इसमें ये था, इसमें ये था, नाउ गो नेक्स्ट। फिर उसके बाद में स्टडी इन क्वाइट एंड कंफर्टेबल एनवायरमेंट, ऐसी जगह पढ़ना है जहां शांत हो, कोई डिस्टर्बेंस ना, टेक रेगुलर ब्रेक्स, ये बता दिया। अंडरस्टैंड द एग्जाम फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर, तो हमारा एग्जाम फॉर्मेट कैसा है, एक प्रश्न है उसके चार उत्तर है और वो सारे प्रश्न इसी मुरलियों से है, ओनली वन करेक्ट आंसर, दो करेक्ट आंसर कर दोगे तो रॉन्ग हो जाएगा, एक ही करेक्ट आंसर, वो ऑप्शन भी नहीं है वैसे उसमें। हाँ उसमें अभी एक रफ क्वेश्चंस पेपर उसमें दिया है जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वो नहीं आने वाला, अभी जो देंगे कल खुलेगा, वो कल खुलेगा, एक 15 क्वेश्चंस दिए हैं प्रैक्टिस के लिए, तो वो आप वो हाँ उसमें। और एक चीज, हर एक को मेल आईडी जरूरी है इसमें, बिना उसके आप नहीं कर पाओगे, इसलिए आपके पास दो तीन दिन है तो मेल आईडी एक बना लो, भोली भाली माता है उनको मेल आईडी ये सब नहीं होता है, तो कोई बना के दे देगा उनका, कोई घर पे होगा आईटी जानने वाला, तो एक मेल आईडी बना लेना है अपना। हाँ ये इसलिए कर रहे हैं, नहीं तो लोग क्या करते हैं, एक बार पेपर देंगे और फिर दूसरे नाम से वापस देंगे, पहले इसमें तो क्योंकि क्वेश्चन तब तक सारे पता है, तब तक ढूंढ लेंगे सारे। हाँ हाँ ओपन, हाँ दो लोग एग्जाम एक साथ, जैसे 50 प्रश्न है, 50 प्रश्न में तीन चार सेट्स है, मतलब दो आसपास भी बैठे, तो इसका पहला दूसरा है, उसका पहला दूसरा है क्वेश्चन, चार क्वेश्चंस भी अलग अलग है, फुल सिक्योरिटी करके रखी है। अभी जो बनाया वो तो बिल्कुल रफ है, जो मेन सॉफ्टवेयर बन रहा है ऐप, उसको थोड़ा टाइम लगेगा, ग्रुप एग्जाम नहीं होगा, तो आप नोट्स भले कैरी करो, चीटिंग नॉट अलाउड है, बट आप चीटिंग करने भी बैठो तो भी क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आप बुक सामने रखो तो भी ढूंढ नहीं पाओगे, और एक घंटे में नहीं कर पाओगे, एक प्रश्न का उत्तर पूरी मुरलिया आपको पूरी बुक ढूंढनी पड़ेगी, उसमें 5 मिनट चले जाएंगे, आपके 40-50 प्रश्नों में से 30 होंगे बस, 20 तो गए फिर, और टाइम जैसे हो जाएगा, चाहे आपका पेपर हो या ना हो, वो सबमिट कर देगा, खींच लेगा वो स्टॉप। हाँ वो आप फिर विजुअलाइज सक्सेस एंड स्टे मोटिवेटेड, अभी से विजुअलाइजेशन चालू कर दो कि मैं एग्जाम में बैठा हूं, एग्जाम दे रहा हूं, ऊपर से किरणें आ रही है, मुझे सब एक एक प्रश्न आ रहा है फटाफट फटाफट, और अपने मार्क्स देखो अपने मन की आंखों के सामने, यहाँ भ्रुकुटी के मध्य में 50 out of 50, यहाँ देखो 30 out of जितने आपने सोचे है, 35 तो पासिंग है, 35 के नीचे फेल, 50 मार्क्स का प्रश्न है, 50 प्रश्न 50 मार्क्स के, पासिंग मार्क है 35, ओनली एक ही बार दे सकते हैं आप। फिर दूसरे जो पास्ट ईयर के पेपर्स है, पेपर बैंक, उसको सॉल्व करो, ऐसे बहुत सारे मॉक पेपर बैंक है, क्यू बैंक, क्वेश्चन बैंक्स है, पर इस ईयर की मुरली पर कोई क्यू बैंक नहीं है, इसके लिए ये ऑप्शन यहाँ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर उसके बाद में टेंशन नहीं लेना है कुछ भी, टेंशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, एंगेज इन रिलैक्सेशन टेक्निक्स करो, ये 5 senses मेडिटेशन जो अभी सुनाया वो करो, या राजयोग करो, कुछ भी करो, पर टेंशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि टेंशन में सब भूल जाता है। फिर उसके बाद में है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको फटाफट पढ़ लो, ठीक है, तो आज 13 मुरलियां आपको पढ़नी है और फटाफट काम करना है इसके ऊपर, जब ये होगा तो फिर तभी सोना, उसके पहले सोना नहीं, ठीक है, पर नींद अच्छी करना और बीच बीच में स्वयं को थोड़ा रिलैक्स भी करना, ठीक है, और सारा पेपर देना है, और अगर आपको लगे कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है उसको छोड़ के आगे के क्वेश्चन पे जाना है, उसी को ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करते रहना है, ये है वो है वो है वो है। हाँ जो पहले पहले आते हैं ना सिंपल सिंपल वो कर देना, जो छोड़ा है उसको आप एक अपना चिट पेपर भी रख सकते हो, नोट रफ पेपर, जो उसमें आप ये करके रखो, ये फोर्थ नंबर मुझे नहीं आया है, कम बैक टू फोर्थ नंबर लेटर ऑन, पहले जो मेन मेन है जो जो आता है वो कर लो, और फिर जो नहीं आता है उसको बाद में करना है। हाँ ये फोर्थ नंबर बाद में करना है, सिक्स नंबर बाद में करना है, आगे जो सॉफ्टवेयर बनाएगा उसमें वो ऑटोमेटिक रहेगा ऑप्शन, आप उसको ये कर सकते हो, मार्क करके रख सकते हो, हाँ जंप कर सकते हो 1 to 3, 3 to 5, और वो जिस पे है उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहेंगे, अभी ये तो रफ वाला बनाया है, ट्रायल है ये वाला, तो इसमें इतने ऑप्शन नहीं है। एक विदेशी बहन आई थी जिसको गीत गाना था ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, आई है बहन, कल आने वाली थी, अच्छा नहीं आए, वो कल जो गीत बजा था ना वो उसको गाना था, अच्छा चलो कोई नहीं। तो जब हम बचपन में रहते हैं ना, एक से तीसरी कक्षा तक परीक्षा के लिए सब कुछ पढ़ो, ये एक एटीट्यूड होता है। जब फोर्थ से सिक्स स्टैंडर्ड में जाते हैं तो क्या करते हैं फिर बच्चे, ये क्वेश्चन हार्ड है इसको छोड़ देते। फिर सेवन से दस में जाते हैं ना तो सिर्फ इंपॉर्टेंट जो है ना वही पढ़ते। फिर जब ग्यारहवीं में पहुंचते हैं, मेरे ख्याल से ये चार चैप्टर बहुत है पास होने के लिए। फिर जब बारहवीं में पहुंचते हैं, आज कौन सा एग्जाम है, और फिर कॉलेज में आते हैं तो अपने दोस्त को कम से कम बता तो दिया होता आज पढ़ाई कर, आज एग्जाम है, पेन भी नहीं लाया। जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे थोड़ा जो सीरियसनेस होता है ना वो कम कम होते जाता है। तो अभी वापस बचपन में लौट जाना है और सोचो ये एग्जाम है और मुझे इसमें फुल मार्क्स लेने हैं और फुल पढ़ाई करनी है, पूरा जोर लगा देना है। जितने मार्क्स मिले वो अलग बात है, पर जोर तो पूरा लगा देना है बस। 700 भी कम है। जितने जिन्होंने ये पूरी भर्ती भी नहीं की, जिन्होंने ये कोई टेक्निक्स यूज नहीं की, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। आप अपने रीति से जिस तरह से बचपन से पढ़ते आ रहे हो, जब से ज्ञान में आए, ये मुरली तो यूनिवर्सल है ना, इसमें तो यहाँ जो बताया जरूरी नहीं वो सब फॉलो करो, पर एग्जाम तो सबको देनी है, सब दो। हाँ, कई बार पढ़ चुके हो, कई बार रिवाइज कर चुके हो, क्लासेस करा चुके हैं इस पर, तो आप एग्जाम तो देना ही है। परों को हवा दे, कांधों को शाबाशी देकर चल पड़े, दे मौका जिंदगी, इम्तिहानों से ना डरे हम। एग्जाम से डरना नहीं है, देना है, हम बिल्कुल नहीं डरना है। ये फेल होंगे इसलिए डर से तो बिल्कुल नहीं देना है। कुछ भी हो, जो फेल हो गया तो क्या, वो फेल पास की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। यहाँ पर अच्छा, जो कभी फेल नहीं हो गया चलो, पर फेल का लक्ष्य नहीं रखो, लक्ष्य रखो कि मुझे फुल पढ़ना है और आई हैव टू पुट ऑल माय एफर्ट्स। बस देखो, कोई भी एग्जाम पास होने के लिए तीन चीजें चाहिए, पहला हार्डवर्क, दूसरा कमिटमेंट और तीसरा लक। अब ये दो हमारे हाथ में है, अब लक जो है उसको छोड़ दो, पर उसके लिए भी आप कहो कि मैं भाग्यवान आत्मा हूं, जो भाग्य बिताता है उसने कलम मेरे हाथ में दे दिया, ये सारे सामान्य से इस लक को भी अपनी तरफ कर लो। नहीं तो ये जो है एक लक फैक्टर तो होता ही है, चाहे किसी ने कितना भी पढ़ा हो, सब कुछ पढ़ा हो, फिर भी एक फैक्टर होता है कि लक होता है उसमें, कि वो लक के आधार पर कोई कुछ भी नहीं पढ़ता तो भी पास हो जाते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। और जो बिन रात पढ़ते रहते, हमको याद है MBBS में हमारे समय में वो जो गर्ल्स हॉस्टल था ना, इधर बॉयज हॉस्टल था BH उधर GH, वो गर्ल्स हॉस्टल में एक महीना पहले जितनी लड़कियां थी उनकी मम्मी आ जाती थी वहां पर और उनको अच्छा अच्छा खा के खाना के बना के खिलाती थी और वो दिन रात पढ़ती रहती थी, और ये जो बॉयज थे ये कुछ भी नहीं करते थे। इनकी जागरण तब होता था एग्जाम के 15 दिन पहले, फिर आते थे कि कोई इंपॉर्टेंट क्या है वो बताओ, और ये दिन रात। और फिर भी कई बार ना ये जब एग्जामिनेशन हॉल में भी एग्जामिनेशन से पहले ही ये सब रोते रहते थी उनकी मम्मियां, और वो क्या होगा मेरा क्या होगा, और इधर बॉयज जो थे टेंशन ही नहीं था, और एग्जाम होने के बाद में वो फिर रोते रहते थे कि मेरा एक गलत हो गया, मेरा एक गलत हो गया। हमारे जो बॉयज थे सारे वो कहते थे अच्छा हमने तो सारा छोड़ दिया, पता नहीं पास हो गए तो हो गए, नहीं तो छोड़ो फिर बैठेंगे एग्जाम देने, पर वो पास भी हो जाते थे। तो लक एक फैक्टर होता है, उसको छोड़ दो, पर हार्डवर्क हमारे हाथ में है, कमिटमेंट डेडिकेशन हमारे हाथ में, ये दो चीजें करनी है, परीक्षाओं से डरना नहीं है। दिल में जो चुपते थे रहते थे दुबके से गाने लगे, पलकों की खिड़की पे अरमा वो चुपके से आने लगे, परों को हवा दे कांधों को शाबाशी देकर चल पड़े, ते मौका जिंदगी, इम्तिहानों से ना डरे हम, ते मौका जिंदगी। ओम शांति।
जो छुपते थे रहते थे दुबके से गाने